गौतम प्रभु ने वीर प्रभु के वाणी को सूत्र रहे गुरु परंपरा से नमन करो जिन वाणी को चर्चा पिंड शुद्धि की कर लूं भाव विशुद्धि पाने को भाव सदा परिशुद्ध रहे बस आत्म वैभव पाने को।
हो गया अधिकार पूरा हो गया
इसका थोड़ा सा
और भी आगे है क्या पिंड शुद्धि अधिकार खत्म हुआ क्या
नहीं अभी थोड़ा और बचा मंत्र है कि जो भोजन का विभाग बता रहे काल बता रहे और अंतराय बता रहे भोजन के विभाग का परिमाण बताते हैं उदर का आधा भाग व्यंजन अर्थात भोजन से भरे तीसरा भाग जल से भरे और वह साधु चौथा भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखे साधु अपने उदर के चार भाग करे
तो हो चुका है
नहीं वो तो पहले स्टार्टिंग में ये तो डिटेल थोड़ा दे रहे हैं
ठीक
साधु अपने उदर के चार भाग करे उनमें से आधा भाग व्यंजन भोजन से पूर्ण भरे तृतीय भाग जल से पूर्ण करे और उदर का चौथा भाग वायु के संचार के लिए खाली रखे उदर का चौथा भाग खाली ही रखे कि जिससे छह आवश्यक क्रियाएं सुख से हो सके स्वाध्याय ध्यान आदि में भी हानि न होवे तथा अजीर्ण आदि रोग भी न होवे
ठीक ठीक है ये हो गया था विषय
भोजन के योग्य काल को कहते हैं सूर्य के उदय और अस्त काल की तीन तीन घटिका छोड़कर भोजन के काल में तीन दो और एक मुहूर्त पर्यंत जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट है
जघन्य काल मध्यम काल
उत्कृष्ट
काल जघन्य काल कौन सा
सूर्योदय के तीन घड़ी बाद से लेकर सूर्यास्त के तीन घड़ी पहले तक के मध्यम में आहार का काल है
एक घड़ी 24 मिनट का होती है तो तीन घड़ी का मतलब कितने मिनट 24 72 मिनट यानी एक घंटा
12 मिनट
तो सवा घंटा सूर्योदय के सवा घंटा बाद आहार का टाइम है
आहार का समय
है और सूर्यास्त के इतना ही समय पहले यानी एक घंटा 12 मिनट पहले तक आहार कभी भी कर सकते बीच में कभी भी कर सकते हैं बाद कितना और सूर्यास्त के पहले कितना ये बता दिया तो सुबह मध्याह्न और शाम मध्याह्न में भी आहार किया जा सकता है 12 बजे का काल ऐसा है कि वह सामायिक काल होने से उसमें आहार नहीं कर सकते 12 से 1 बजे तक 1 बजे के बाद से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटे 12 मिनट पहले तक आहार कभी भी ले सकते हैं मतलब शाम ही कहें शाम और दोपहर दोनों मिलेंगे शाम और दोपहर दोनों मिलके और सुबह जो है सुबह का काल 11 बजे तक ही लेना पड़ेगा सुबह ही होगा ना 12 बजे तक का काल को सायं सकाळी ही बोलते सकाळ पेपर नहीं सकाळ सकाळ काही पर सुबह
का समय 12 बजे मध्यान्ह 12 बजे के बाद
इधर तीन घड़ी छोड़कर उधर तीन घड़ी छोड़कर बीच में कभी भी आहार कर सकते हैं, केवल 12 एक घंटा छोड़कर बीच में सामयिक का काल। इसको इसलिए कहा कि क्या 10 बजे ही आहार करना चाहिए क्या, 11 बजे ही आहार करना चाहिए क्या, और कोई काल नहीं है क्या? तो कहते हैं ऐसा नहीं, इसका कोई नियम नहीं होता कि 10 बजे ही आहार के लिए उठे। कभी कभी संदर्भ ऐसा आता है कि दोपहर में भी उठना पड़ता है, विहार से आए और लेट हो गया तो दोपहर को भी उठ सकते हैं। आहार के कितने टाइम हैं? तीन घड़ी छोड़ करके सुबह 12 बजे तक के अंदर का काल और 1 बजे के बाद से लेकर दिन डूबने के 3 घड़ी पहले तक, 3 घड़ी पहले, इसे 2 टाइम है आहार लेने के, 2 टाइम है। कभी भी आहार ले सकते हैं पर 2 बार नहीं ले सकते, एक ही बार। टाइम 2 है, उठना एक ही बार है, आहार लेने के 2 या 3 टाइम भी कह सकते हैं उसको, सुबह मध्यान्ह और सायंकाल। 3 बजे के उपरांत तो फिर वो 3-4 बजे के बाद सायंकाल ही कहलाएगा ना, तो सायंकाल भी उठ सकते हैं। दोपहर को नहीं हुआ तो सायंकाल तक आहार ले सकते हैं। टाइम 3 है, लेना एक ही बार है, कोई किसी भी टाइम में। एक भुक्ति ये मूल गुण है ना साधु का, एक बार भोजन करना, खड्गासन से भोजन करना, एक ही जगह खड़े होकर भोजन करना, ये नियम होने से एक ही बार खा सकते हैं। उस दिन हुआ था ना कोल्हापुर में, 9 बजे का था शायद, वो 9 का था सुबह सुबह, कुछ दिन करना पड़ा था कोल्हापुर में, तो ये 9 बजे बहुत जल्दी होता है करके फिर वो टाइम जरा चेंज हो गया, 9:30 का हो गया। लेकिन सुबह भूख नहीं लगती, अगर 10 बजे खाने का टाइम है तो सुबह तो ऐसा ही नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हम भूख लगी है और भोजन कर रहे हैं, गलत टाइम आ गए हैं ऐसा लगता है। आगे
वो तो बता दिया सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से लेकर सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक के मध्य में आहार का काल है। उस आहार के काल में 3 मुहूर्त तक भोजन करना जघन्य आचरण है, 2 मुहूर्त में भोजन करना मध्यम आचरण है, एवं 1 मुहूर्त में भोजन करना उत्कृष्ट आचरण है। यह काल का परिमाण सिद्ध भक्ति करने के अनंतर आहार ग्रहण करने का है, न कि आहार के लिए भ्रमण करते हुए विधि न मिलने के पहले का भी। अर्थात यदि साधु आहार हेतु भ्रमण कर रहे हैं उस समय का काल इसमें शामिल नहीं है।
भोजन स्टार्ट होने के बाद भोजन खत्म होने तक का जो काल बताया है वह जगन कितना
3 मुहूर्त तक भोजन करना जगन में,
3 मुहूर्त जगन
उस आहार के काल में 3 मुहूर्त तक भोजन करना जगन्य
आचरण,
2 मुहूर्त में भोजन करना मध्यम आचरण, एवं 1 मुहूर्त में भोजन करना उत्कृष्ट।
1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट में आहार करके पूर्ण करते हैं तो उत्कृष्ट है।
खड़े होने के बाद स्टार्ट
वहां से पकड़ेंगे, बराबर है उत्कृष्ट 48 मिनट, फिर 2:48 ये मध्यम आचरण, 3:48 ये जघन्य आचरण, इतने टाइम तक मतलब ये क्यों रखा है? समाधि आदि के काल में आहार बहुत धीरे धीरे लेना होता है, ज्यादा नहीं है, किसी न किसी प्रकार से देना पड़ता है, या बीमार अवस्था, कोई अवस्था आ सकती है, कोई समस्या हो सकती है, तो आहार में टाइम अवश्य लगता ही है। जैसे अभी हाँ एक महाराज को है ना वो समस्या, उनको कितने 2 घंटे लगते, 2 घंटे लगते, तो मध्यम है ना वो, 2 घंटे में कितने 48 बैठते हैं,
50 मिनट
जगन हो गया, जगन में आ गया वो। ठीक है, वो तो लगेगा उतना, पर उत्कृष्ट कहकर जल्दी जल्दी खाना ठीक नहीं। चबाई नहीं। उत्कृष्ट कहकर आहार कैसा करना चाहिए, कितनी बार चबाना चाहिए, आयुर्वेद ग्रंथों के हिसाब से एक ग्रास 32 बार चर्वन करना चाहिए। उतनी बार नहीं होता है ना, लेकिन ग्रंथ ये कहता है कि 32 बार चर्वन करना चाहिए। कितनी बार होता है फिर उसको भी गिना नहीं है,
8 बार
गिन के देख लो कितनी बार लग चर्वन होता है,
कम से कम 8 बार तो होना चाहिए,
गिन के देखना चाहिए, 8 बार क्यों ज्यादा होता है वो पता नहीं चलता। ग्रास मुंह में जाने के बाद कितनी बार चबाना, तो 32 बार चबाना, ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, जितना चबाएंगे उतना अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए, भले ही कम खा लो लेकिन चबाना 32 बार, और 32 बार चबाना नहीं होता तो क्या करते हैं, 16 बार चबाते, मान लो 16 बार चबाते, 16 बार भी नहीं होता। दांत अच्छे हो तो 32 बार कहां से होगा, जिनको दांत नहीं रहता उनको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्या फायदा है इससे, एकदम स्पीड से खाने में फायदा क्या है? नहीं, उससे गैस बनती है, उसको चर्बी नहीं करेंगे तो आंतों में प्रेशर पड़ता है, आंतों को रस बनाकर निकालने में वहां टेंशन पड़ता है, तो जितना चबा के खाते उतना अच्छा।
आहार के लिए निकले हुए क्या करते हुए भ्रमण करते हैं सो बताते हैं। भिक्षा के लिए चर्या में निकले हुए मुनि पुनः गुप्ति गुण शील और संयम आदि की रक्षा करते हुए और 3 प्रकार के वैराग्य का चिंतन करते हुए चलते हैं या आचरण करते हैं।
जब आहार के लिए निकलते हैं तो वैराग्य का ही चिंतन रहता है, क्या वैराग्य, ये आहार संयम रक्षा के लिए दिया जा रहा है, देने को जाना पड़ रहा है, अगर शरीर ना होता तो आहार नहीं देने की जरूरत नहीं थी, भूख प्यास अरहंत भगवान के समान अगर ना होता तो आहार देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये असाता वेदनी मोहनी कर्म के उदय में इस शरीर को देना पड़ रहा है, देना पड़ता है, ये कह करके वैराग्य चिंतन करते हुए जाते, और लेते समय भी ये संयम के लिए दे रहा हूं, इसमें अपने को हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। तो वीतराग भाव से संयम रक्षा के लिए जो आहार लिया जाता है वह आहार भी भावों की पवित्रता के कारण उसका जो रस बनता है, शरीर बनता है, सप्त धातु बनती है, उसमें भी संस्कार आते हैं। इस प्रकार आहार करते समय वैराग्य भावना का चिंतन करने से कभी भी जीव को कषाय नहीं होगी, कषाय तीव्र नहीं होगी, क्योंकि खाते समय जैसा भाव से खाएंगे वैसा ही विचार आएगा। जैसे खावे अन्न वैसे जिस भाव से हम खाएंगे उस भाव का उसके साथ चरवण होकर उसका भी प्रभाव पड़ता है। भावों का संस्कार क्या पुद्गल पर नहीं आता? आता है। जैसे भोजन किया है और आपको किसी ने कहा आपके पेट में मक्खी गई है तो असर पड़ता है कि नहीं? अंदर के भोजन पर मक्खी गई है तो उल्टी हो जाती है तत्काल तत्काल उस पर असर पड़ता है, खाए हुए भोजन पर, वो बाहर निकल आता है। तो खाते समय हम इतने पवित्र भाव से खाएंगे, वैराग्य की भावना भाती हुई पवित्र भावना से खाएंगे, तो संस्कार भी पूरा शरीर का रक्त सात्विक संस्कारित संयम भावना से, बारह भावना से संस्कारित है, उसका अच्छा असर पड़ता है। उससे क्या है, कषाय विजेता होता है जीव, इंद्रिय विजेता, कषाय विजेता हो जाता है। तो खाते टाइम कैसे परिणाम रखना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। बनाने वाले बनाते समय कैसे भावना रखे, इसका भी महत्व है। आजकल पंचम काल में विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती? बनाने वाले बनाते समय ठीक भाव नहीं रखते।
दुर्गर की बात है, संसार की बात ज्यादा
उसको बनाते समय क्या भावना रखना चाहिए? दाता को भी नियम है ना, क्या भावना रखना चाहिए? विधि की विशुद्धि रखना चाहिए, विधि में विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। मुनि महाराज को जो हम आहार देंगे, अतिथि से विभाग करेंगे, वह विधिवत बने, यानी 16 उद्गम दोषों से रहित हमारी तरफ से भोजन का निर्माण हो, इसकी भावना भाते भाते बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारी भावना तो अच्छी है, हम महाराज को वो देंगे, ये देंगे, ये देंगे, सब उद्देश्य पकाना शुरू हो जाता है, उद्दिष्ट पकाते हैं तो मुनि महाराज की विशुद्धि नहीं पड़ती, क्योंकि उनके लिए पका के रखा तो उनके उद्देश्य हुआ वो, और उद्देश्य हुआ इसलिए दोष लगा, और मुनि महाराज को विधि पूर्वक आहार नहीं मिला, विधि में कमी आई, अनुद्दिष्ट आहार नहीं मिला। ये बात अलग है कि उनको मालूम नहीं था आपने कैसे बनाया, किन परिणामों से पकाया, लेकिन लेना तो पड़ा उनको। अगर उद्देश्य पूर्वक ही बनाया है तो विधि तो गायब हो गई। तो दाता किस प्रकार परिणाम रखे, भाव रखे, इसके लिए भी नियमावलियां हैं जो 16 उद्गम दोषों में लिखा गया है। तो दाता के परिणाम, मैं अतिथि को भोजन नहीं पका रहा हूं, अतिथि के उद्देश्य से एक भी चीज नहीं बना रहा हूं, ये तो भावना रखे, ये विधि है। अब देते समय कैसे दें, ये मेरे लिए जो पकाया था भोजन उसमें से मैं अतिथि समीभाग कर रहा हूं, ऐसा भाव रखिए। देते समय मैं अपना दे रहा हूं, ऐसा भाव। पकाते समय मैं अपने लिए पका रहा हूं और इसमें से भोजन प्रतिशत भोजन दूंगा, अतिथि समीभाग जितना बनता है उसमें उस प्रतिशत में भोजन हम देंगे, ये भावना रखना चाहिए। अतिथि आएंगे या क्या नहीं आएंगे, टेंशन है। ये टेंशन कब आता है, जब उनके लिए पकाते हैं, बना के रखते हैं, तो टेंशन आता है। तो दाता को टेंशन हो और अतिथि उस भोजन को ले रहे हो तो अतिथि की भी विशुद्धि नहीं बढ़ती। ये भक्ति के भाव जरूर हैं, लेकिन अंध भक्ति है, विधि रहित भक्ति अंध भक्ति के कोटि में ही आती है। विधिवत भक्ति वो यथार्थ भक्ति की कोटि में आती है। भावना ये रखना चाहिए कि हमारे लिए अतिथि का लाभ मिले, ये भावना रखना चाहिए। पर भोजन पकाते समय मैं अतिथि के लिए पका रहा हूं ये भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो औद्देशिक दोष हो जाता है। तो ग्रंथ के शुरुआत में ही कहा था ना 16 उद्गम दोषों में कहा था, सबसे पहला औद्देशिक दोष चार का व्याख्यान आया, चार औद्देशिक दोषों का निरूपण आया। तो सबसे पहले तो औद्देशिक से ही बचना है। फिर ये भी कह दिया उससे तो बच गए लेकिन खुद के लिए पका रहे थे और अतिथि आ रहे हैं इसको सुनते ही एक मुट्ठी जरा चावल और बढ़ा दिया अतिथि के उद्देश्य से, तो उनको भी देंगे हम भी खाएंगे, ऐसा भाव आया तो अद्यधि दोष लग गया, विधि बिगड़ गई, उसको अद्यधि कहते हैं। पकते हुए चावल में से थोड़ा चावल और बढ़ाना, मिक्स करना, ये अद्यधि दोष है। दाता 16 दोषों से अतिथि को बचा करके आहार देगा तो उनकी विशुद्धि बढ़ेगी और स्वयं भी टेंशन में नहीं पड़ेगा, कभी भी टेंशन नहीं आएगा, सहजता सरलता रहेगी। वो ये सोचेगा कि हमारे लिए बना था, अतिथि नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, सहजता रहती है ना, और अतिथि के लिए बनाया था अतिथि नहीं आए तो टेंशन आ जाता है कि आप भी कौन भोजन करेगा, ऐसा ये विकार भाव पैदा होते। तो उस भोजन को अतिथि को देंगे तो उनकी विशुद्धि बढ़ेगी। चौथे काल में अवधि ज्ञान होता था, मनापुरे ज्ञान होता था, केवल ज्ञान होता था। आज पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है, मनापुरे ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान हो सकता है। परंतु अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम क्यों नहीं हो रहा है किसी को, तो कहीं तो कमी है। वह कमी दाता की तरफ से भी हो सकती है और अतिथि की तरफ से भी हो सकती है। अतिथि सावधान न हो तो विशुद्धि नहीं बढ़ती, दाता सावधान न हो तो विशुद्धि नहीं बढ़ती। चौथे काल में क्या था, आहार अतिथि का उद्देश्य बना करके आहार बनाना ही नहीं पड़ता था। क्योंकि घर घर में कुएं, शुद्ध पानी, घर का सभी हाथ से पिसा हुआ आटा, सब विशुद्ध था ना, सभी विशुद्ध था वो, इसलिए विधि बिगड़ती नहीं थी उसमें, इसलिए वो अतिथि को विशुद्धि का कारण बनता था। और जितना भी था वो टॉनिक था, नीरस करने पर भी शरीर में शक्ति रहती थी, सामायिक में मन लगता था, विशुद्धि बढ़ती थी, ऐसा था। काल बदल गया, भोजन नीरस हो गया, आज घी में कोई गंध नहीं, घी भी नीरस है। पहले घी तपा रहे हो घर, किसी घर में तो बाहर पता चलता था सड़क पर कि इस घर में कोई घी तपा रहा है, गंध वहां तक जाती थी। और आज तपाए हुए घी को सामने भी रख दो, उसको सूंघ लो तब पता चलता है, इतना निकट चाहिए अब वो उसको तपा दो तो कहीं गंद ही नहीं इधर उधर फैलती नहीं गंद। तो उसमें जो गुणवत्ता है घी में वो गुणवत्ता कम हो गई। गुणवत्ता कम हो गई
दीक्षाचर्या में प्रविष्ट हुए मुनि मनोगुप्ति वचन गुप्ति और काय गुप्ति की रक्षा करते हुए चलते हैं। मूल गुणों की और उत्तर गुणों की रक्षा करते हुए तथा शील संयम आदि की रक्षा करते हुए विचरण करते हैं। ऐसे मुनि शरीर से वैराग्य संग से वैराग्य और संसार से वैराग्य का विचार करते हुए विचरण करते हैं। अज्ञा अनवस्था मिथ्या आराधना आत्मनाश और संयम की विराधना इनका इनकी चर्या में परिहार करना चाहिए। आज्ञा अर्थात वितराग शासन की रक्षा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए साधु विचरण करते हैं ऐसा संबंध लगाना और निम्न दोषों का परिहार करते हुए विचरण करते हैं। अनवस्था स्वेच्छा प्रवृत्ति मिथ्या आराधना सम्यक्त्व के प्रतिकूल आचरण आत्मनाश आत्मनाश स्व का घात संयम विराधना संयम की हानि ये दोष है। चर्या में प्रविष्ट हुए मुनि जैसे अनवस्था न हो वैसा आचरण करते हैं। मिथ्यात्व की आराधना आदि ये दोष जैसे न हो सके वैसा ही प्रयत्न करते हुए पर्यटन करते हैं तथा अंतरायों का भी परिहार करते हुए आहार ग्रहण करते हैं।
ठीक है, सब तरफ ध्यान रखते हुए आगम के विधि विधानों का लोप न करते हुए विवेक पूर्वक आहार करने के लिए चर्या के लिए निकलते हैं। हाँ वही वितराग शासन का मतलब चर्या की रक्षा, चर्या ही वितराग शासन है, उसकी ही रक्षा करते हुए विवेक से पर्यटन करना ये आहार चर्या है।
वे अंतराय कौन से है सो बताते हैं।
32 अंतराय पता लगेगा ना सबको
अंतराय कौन से है उसके बारे में। 32 अंतराय है उसके नाम
अंतराय 32 होते
अमेध्य
का काक स्पर्श
काक बक आदि पक्षी वीट कर देते
वीट करने पर हाँ चर्या चर्या के लिए निकल रही थी तो आकाश से बीट कर दिया तो अंतराय हो जाएगा।
कौवा
है कोई भी पक्षी मलमूत्र करता है और वह मुनि महाराज के शरीर पर गिरता है तो अंतराय। और
अशुचि पदार्थ विष्टा आदि से यदि पैर लिप्त हो जाए तो अंतराय हो जाए।
विष्टा पर पैर पड़ सकता है ये अगर लिप्त हो गया तो अंतराय। विष्टा पर पैर पड़े तो अंतराय। गोबर है गोबर पर पैर पड़ा तो अंतराय। वो त्रिंच प्राणी का विष्टा है ना नहीं नहीं वो तो सूखा हुआ होता है गीला थोड़ी रहता है। गीली जमीन पर तो आहार लेंगे नहीं। गीले गोबर में संगी पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति निरंतर रहती है। अशुद्ध भी है और जीव हिंसा भी है।
वमन यदि स्वयं
गोबर से रसोई घर को लीपना चाहिए क्या नहीं एक प्रश्न। सिटियों में तो इसकी कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। छोटे छोटे गांवों में यही प्रश्न आता है कि गोबर से लिपना चाहिए कि नहीं बहुत लोग पूछते हैं। गोबर से लिपा हो तो मुनि महाराज वहां जाते नहीं। कम से कम रसोई घर तो गोबर से नहीं लिपना चाहिए, बाहर लिपते हैं वो रहता है, क्योंकि रसोई घर में गोबर लिप करके आप गर्म करेंगे, आहार सामग्री निर्माण करेंगे, आहार को निकाल करके पाटे पर रखेंगे, जब जमीन पर होता है ना पाटे पर रख रहे हैं, पाटे के ऊपर एक बर्तन रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया, कपड़ा लटकता है नीचे, गोबर के परमाणुओं से लटकता रहता है, वो परमाणु आहार में गिर सकते हैं। तो गोबर तो अशुद्ध मल है प्राणी का, आहार शुद्धि बिगड़ जाएगी। तो कम से कम जहां आहार पकाया जाता है ऐसा जो रसोई घर है, रसोई घर में तो गोबर से लिपा हुआ नहीं होना चाहिए। वो सूखने के बाद उसकी धूल उड़ती है गोबर की, मालूम है? कभी देखा होगा देहातों में, उसकी धूल उड़ती है जोर से, मतलब हवा चली, मान लो रसोई घर में हवा आ गई तो वो परमाणु उड़ करके आहार में भी गिर सकते हैं। मिट्टी का गिरना फिर भी ठीक है, लेकिन गोबर का गिरना ठीक नहीं। मिट्टी भी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अशुद्ध कौन, मिट्टी अशुद्ध है क्या गोबर अशुद्ध है? ठीक है, मिट्टी के बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं, चावल पकाते हैं, तो उसको दे सकते हैं अतिथि को, मिट्टी को शुद्ध कहा है, पके हुए, पहले तो ऐसा ही था सब,
पीतल के बर्तन को बाहर से मिट्टी लगा,
हाँ पीतल के बर्तन को भी मिट्टी लगा देते हैं, और मिट्टी के बर्तन में भी कोई पानी गर्म किया या कोई वस्तु पकाया तो और अच्छा रहता है। वो
मिट्टी का बर्तन भी वही गोबर से बन जाता है?
नहीं, गोबर से नहीं बनता, लेकिन जलाते हैं ना उसको, जलाते हैं उसको, ये तो गोबर तो गोबर है, ये तो इसको जला हुआ थोड़ी है, जला करके पोता जाता है राख से, राख बनने के बाद तो मिट्टी हो गई सब चीज, राख बनने के बाद तो वो मिट्टी बन जाती है, लेकिन उसमें गोबर की मात्रा कम रहती है यदि मिलाते हैं तो, और उसकी मात्रा मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, और उसको जब जलाते हैं तो फिर वो राख ही हो जाती है, वो मजबूती के लिए करते हैं उसको, लेकिन सभी मिट्टी में भी नहीं मिलाते, चीनी मिट्टी वगैरह प्योर मिट्टी के बनते हैं, उसमें गोबर का सवाल नहीं उठता, चीनी मिट्टी ये चाय पीने के वो बनते हैं, कप से जो बनते हैं चीनी मिट्टी के बनते हैं, उसमें गोबर नहीं मिलाते। नहीं, उसके कहां बर्तन बनते हैं, बर्तन नहीं बनते, लेकिन उसमें कोई चीज पकाया नहीं जाता, पकाने पर फूट जाएगा वो, कोई चीज पकाने के लिए उपयोग बर्तन के रूप में उपयोग नहीं करते, कोई चीज रखना हो या पानी आदि रखना हो, दूध रखना हो, चाय रखना हो तो रखने के लिए उपयोग में आता है, पर ये मिट्टी के बर्तन जो हैं, लाल मिट्टी काली मिट्टी, इस मिट्टी से बने बर्तनों में आहार पकाकर खाते भी हैं, पर मिट्टी के साथ यदि गोबर मिला हो तो गोबर सहित उस बर्तन को पहले तो पकाया जाता है, अग्नि जैसे ईंट को पकाया जाता है वैसे घड़े को भी पकाया जाता है, जलाया जाता है उसको, फिर वो कठोर बनता है, फिर वो निर्दोष हो जाता है, वस्तु जल गई तो निर्दोष है।
वमन, यदि स्वयं को वमन हो जाए तो वमन नाम का अंतराय है,
आहार लेते समय वमन हुआ तो अंतराय।
चार, रोधन, यदि कोई उस समय रोक दे या पकड़ ले तो अंतराय,
आहार के लिए निकलते समय किसी ने रोक दिया, रोक दिया तो भी अंतराय। रोकना नहीं नहीं कोई दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं ना बीच में, तो बाजू से दर्शन करना चाहिए। अगर चरण पकड़ लिया तो आप अशुद्धि में हैं, मुनि महाराज शुद्धि लेकर निकले हैं, तो छूने से अंतराय हो सकता है। इसलिए उनके शुद्धि लेकर आहार निकलने के बाद उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही नमस्कार करना चाहिए और रोकने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूर से कर रहे हैं और सामने से, अब रास्ता तो है ही नहीं, एक ही रास्ता है, उसमें बीच में नमस्कार करने लगी तो आपको नमस्कार करने में जरा लेट हो गया और मुनि महाराज को रुकना पड़ता है उस उद्देश्य से, तो ये ठीक नहीं है। बाजू से कर सकते हैं, रास्ता छोड़कर बाजू से नमस्कार कर सकते हैं स्पर्श किए बिना।
आज रुधिर, यदि अपने या अन्य के शरीर से रुधिर निकलता हुआ दिख जाए तो अंदर
रुधिर यानी रक्त, रक्त चाहे दूसरा का दिखे, दूसरे का दिखे या स्वयं का निकले, रक्त दिखने पर अंतराय करना चाहिए। पीऊ भी आ गया, पीऊ पीऊ जब समझते हैं ना, जब सड़ जाता है रक्त तो पीऊ बनता है, तो पीऊ भी अगर दिखता है दूसरे का या स्वयं का तो दिखने से अंतराय हो जाएगा। इसलिए ऐसे घायल अगर शरीर हो गया हो तो काय शुद्धि नहीं रहती, एक तो काय शुद्धि वाले आहार दान नहीं कर सकते, कहीं लग गया हो, चोट लगी, रक्त आ रहा हो, तो पट्टी वगैरह भी बांध करके आहार नहीं देना चाहिए। शरीर एकदम रक्त या पट्टी आदि बंधे हुए से रहित होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग धागा बांधते हैं, उसमें काय शुद्धि बिगड़ती है। आजकल एक फैशन हो गया धागा बांधना और लोक मूर्ता को और प्रश्रय देना कि ये धागा हमारी रक्षा करता है, आत्मशांति मिलती है, इस प्रकार परिकल्पना।
कई लोगों का
धागा से अगर शांति मिल जाए तो फिर मुनि दीक्षा क्यों ले, धागा बांधना, शांति पाना, ध्यान करना, रक्षा सूत्र है ना, धागे में इतना विश्वास, अंधविश्वास, और वो निकालते नहीं,
छह महीने
तक निकालते नहीं, वो गंदा काला होता है देखने के लिए, एक कुछ ऐसा ही लगता है कि क्या है ये, ऐसा
लगता
है। गंदा गंदा रहता है, इस साल का अगले साल तक रहता है गंदगी, वो सब नहीं पहनना चाहिए।
वो तो 16 पहनते हैं, उसमें अशुद्ध परमाणु तो बचे हुए रहते हैं
ना,
पूरे स्थान पर
समूचन जीव उत्पन्न हो गया, पसीना लगता है उसी से, और हर रोज वही रहेगा तो फिर
दीर्घ
अशुद्ध ही हो जाएगा। तो ये चीजें ताबीज है, डोरी है, और क्या क्या,
अंगूठे हैं,
अंगूठी, घड़ी है,
घड़ी
भी आहार देते समय नहीं पहनना चाहिए, उसके अंदर पसीना आता है, सड़ जाता है वहां, वो फिर समूर्छन जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है, फिर बहुत जल्दी काय शुद्धि बिगड़ती है। आहार देते समय इधर उधर हाथ तो लगेगा ही कभी कभी,
गीले कपड़ा,
तो काय शुद्धि में कमी आती है।
अंगूठे पहन
स्नान करने के बाद नहीं, सभी वस्तु अलग करके ही स्नान करना, ये जो बंधे हुए छोटे मोटे, घड़ी नहीं रखना, चश्मा ठीक है, चश्मा बोल रहा, हवा चलती है इसमें और दिखना भी चाहिए, चश्मा लगाकर आप आहार दे सकते हैं, पर अंगूठी पहनना, पट्टा पहनना, कड़ा हो तो बात अलग है, कड़ा ढीला रहता है, पर धागा ठीक नहीं, कोई पट्टा वो भी ठीक नहीं, हाँ टाइट वस्तु, टाइट वस्तु से चमड़ी सड़ जाती है अंदर की, चमड़ी सफेद सफेद हो जाती
है।
हाँ, वो भी नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कुमकुम लगाते हैं तो वो भी गिर सकता है आहार में, बनाते समय, झुकते समय, लेते समय, वो गिरता है कि नहीं, तो आहार बिगड़ जाएगा। आहार देने तक, खत्म होने तक, आहार बनाते समय, निर्माण करते समय और आहार देने के बाद तक उसको लगाना ही नहीं चाहिए। आहार के बाद लगाओ, दिन भर लगाओ, फिर पर आहार निर्माण करते समय स्नान करके कुछ नहीं लगाना चाहिए। काय शुद्धि यही मानी जाती है, स्नान करने के बाद नहीं लगाना, आहार करने के बाद लगाना ये सब,
पुराने लोग
क्योंकि ये गिरने की वस्तु है ना।
पुराने लोग घर के कह रहे थे लगाओ लगाओ, नहीं तो ठीक नहीं है।
नहीं नहीं, वो लगान ठीक है लेकिन आहार के बाद, आहार के टाइम में क्यों? काय शुद्धि को रक्षा करो।
गंध बता रहे, गंध लगा सकते,
गंध भी गिरता है सूख जाए तो वो भी ठीक नहीं, सूखता है वो, सूखने से गिर जाता है। कुमकुम भी गिरता है, ज्यादा लगाए तो गिरता ही रहता है वो ना। वो भी अशुद्ध है। मतलब ये चीजें, स्नान कर लिया तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए जब तक आप भोजन निर्माण कर रहे हैं और आहार नहीं कराते, आहार के बाद ये सब क्रिया करना लगाने का। क्या जल्दी है क्या? स्नान कर लिया तो सबसे पहले वही क्रिया करना, ऐसे जल्दी क्या है? थोड़ा ठहरो, लगाएंगे बाद में लगाएंगे। गैप नहीं पड़ना चाहिए क्या? उसमें भी अंधश्रद्धा होगी कुछ ना कुछ। वो तो लगाती ठीक है, अंधश्रद्धा तो है ही, वो उसको लगाने से कोई पति का उम्र नहीं बढ़ता है। और जिसकी उम्र जितनी रहती है उसके बाद सबको मरना पड़ता है। ये किस लिए लगाते हैं? सिर्फ विवाहिता है इसको दिखाने के लिए लगाया जाता है। विवाहित है इसको प्रदर्शित करने के लिए है, उससे कोई पति की उम्र बढ़ती है और घटती है इसका कोई संबंध नहीं है। विवाहिता है इसके लिए, कन्या को ये नहीं होता, विवाहिता को होता है इसलिए लगाती। सिर्फ इतना ही, विवाहिता है इसके लिए। पैरों में भी वो क्या वो पहनते हैं ना, वो नहीं छोटे रहते हैं ना, जोड़े बोलते क्या, वो भी विवाहित हैं इसको दिखाने के लिए। हाँ वो भी कई चीजें मतलब उनको दिखाने के लिए, लेकिन ये सब चीजें इसमें से एक भी चीज पुरुष को नहीं है। ये विवाहित है कहने के लिए आपके पास क्या है? नहीं नहीं, वो तो सबको होता है, छोटों को भी होता है,
छोटों को सिंगल रहता।
ये तो इधर की पद्धति है, सब जगह ऑल इंडिया पर नहीं है। और वो विवाह का नहीं है, वो तो रत्नत्रय का द्योतक कहा है। हाँ हाँ, आप धर्म स्वीकार कर चुके हैं, यानी पाक्षिक श्रावक हैं। वो तो पाक्षिक श्रावक बनाते समय की बात है, उसको उतने समय के लिए देते हैं, हमेशा पहनने के लायक नहीं है वो, हमेशा कोई पहनता नहीं है और पहना भी नहीं जाता उसको। पूजा करते समय वो अलग रहता है, ये नहीं है वो, वो तो सोने का रहता है, जो इंद्र के पास सोने का वो श्रृंगार रूप में अलंकार की वस्तु है वो, ये धागे का नहीं रहता है, वो सोने का रहता है। हाँ इंद्र के वो है वो अलंकार वस्तु का, तो उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। इंद्र का जो यज्ञोपवीत होता है ना, वो अलंकार की वस्तु जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते समय वो पहनता है, वो धागा नहीं रहता, वो सोने की चीज है, उसको पहन करके वो पूजन करता, और इसलिए पहनता है कि जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ मेरा मन शुभ में रहे इसलिए। और फिर अलंकार बदल भी सकता है, अलंकार कुछ समय के लिए पहना जाता है, पूजा के टाइम में जो अलंकार पूजा के लिए चाहिए पूजा के टाइम में चाहिए, बाकी टाइम में वो जब संसार में व्यस्त रहता है उस समय उसके अलंकार अलग से रहते हैं। तो ये अलग है, इसका इतिहास भी अलग है और इसका कारण भी अलग है, इसका संबंध धर्म से। जब आपको धर्मात्मा बनाया जाता है, जिनेंद्र भगवान के धर्म को आपको स्वीकार जब कराया जाता है, उस समय आपने ये किया, स्वीकार किया, उसके लिए पहचान के लिए एक दिन के लिए होता है वो, आपने स्वीकार किया यानी दीक्षित हो गए जिनेंद्र भगवान के, जिन मार्ग में आप दीक्षित हो गए इसको कहने के लिए दिया जाता है। यानी अजैन को जैन बनाने की प्रक्रिया में यह विधान है, अजैन को जैन बनाना। अलंकार वस्तु नहीं है ये अलंकार, लेकिन आहार देते समय अलंकार भी नहीं किया जाता है ना, शुद्ध धोती दुपट्टा और स्नान करके कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना, पाउडर है या माथे पर बिंदु है, कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना। ज्यादा चर्चा नहीं करना, मुनि महाराज निकलते हैं तो कुछ भी नियम लेकर के निकल सकते हैं, चर्चा वो नहीं हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि शरीर पर क्या होना और क्या नहीं होना, ये
ऑपरेशन थिएटर की तरह शुद्धि होनी चाहिए,
शुद्धि होना चाहिए। डॉक्टर लोग देखो ऑपरेशन करते समय धोए हुए वस्त्र रहते हैं, वो घर में अभी स्नान करके धो करके अस्पताल आ गए, फिर भी उसको अलग करके डिब्बे में प्याक जो वस्त्र रहते हैं उनको निकाल कर उसको पहन लेते हैं और फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं। वो वास्तविक काय शुद्धि। आहार देते समय में भी उतना अति भी नहीं करना और इति भी नहीं करना कम से कम स्नान करो और आहार के देने के लिए देते वक्त जो ड्रेस चाहिए उनको निश्चित करो, नया हो, फटा हुआ ना हो, पुराना ना हो, ऐसा वस्त्र होना चाहिए प्रशस्त हो, सफेद शुभ्र हो, देखने में प्रशस्त लगते हो, ऐसा वस्त्र को पहन लेना चाहिए। ये ऑलरेडी अभी जो 24 घंटे पहनते हैं उन्हीं पर पहनेंगे, वही उन्हीं पर धोए हुए भी हैं और उन्हीं पर देंगे तो वो ठीक नहीं है। कारण क्या है कि ये आहार का ड्रेस नहीं, ये संसार कार्यों को करते समय का ड्रेस है। तो ये इसको पहन करके हर रोज कहीं भी जल जाते हैं और उस पर कोई भी काम होता है तो इसको पहनेंगे तो मन की शुद्धि आपकी इतनी नहीं रहेगी। आहार देते समय जो अलग से मैं आहार दे रहा हूं, ड्रेस का भी प्रभाव रहता है ना मन पर, और सामान्य ड्रेस ही पहनोगे तो उसका महत्व कम हो जाता है, मन की विशुद्धि में कमी आती है। हालांकि धोए हुए हैं दोनों, पर इसको पहनने पर भाव देख लो और उसको पहनने पर भाव देख लो। एक कोई पुलिस का सर्विस करता है, पुलिस है, पुलिस ड्रेस पहनने पर अलग भाव आ जाते हैं और घर में आने पर ड्रेस चेंज करता है और ये पहन लेता है कॉमन, तो उस समय उनके भाव बदलते हैं, इफेक्ट होता है उसका।
और केसरी
निषेध ब्लैक ड्रेस और रक्त कलर का ड्रेस वस्त्र नहीं चलते, बाकी सब ठीक। रक्त वर्ण जैसे देखने से ब्लड जैसा लग रहा ऐसा नहीं चलेगा। ब्लड वर्ण का नहीं पहनना, हरा है, नीला है, पीला है, केसरिया है, सफेद है, सफेद सो सर्वोत्तम, सफेद को सबसे ज्यादा महत्व है। सफेद पहनने से देखो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। हम भी त्यागी जैसे हैं, त्यागी जैसे स्वयं को लगने लग जाए तो भाव की भावना कितनी बड़ी पवित्र होती है। हम भी त्यागी जैसे ही लग रहे हैं तो त्यागी जैसे शुद्ध भाव को धारण करके तो आहार दिया जाता है, विशुद्धि बढ़ती है उससे।
अश्रुपात,
अश्रुपात
दुख से यदि अपने अथवा पास में स्थित किसी अन्य के साथ अन्य के अश्रु आ जावे, अश्रुपात
आंसू नहीं आना चाहिए। आहार देते समय दाता को और आहार लेते समय पात्र को अश्रु नहीं आना चाहिए, और अश्रु आने लायक कोई विचार भी मन में नहीं करना चाहिए।
ऐसा है, बहुत दिनों के बाद साधु का आहार हुआ एक घर में, वो दर्शन खुशी से आनंद के आसपास है, तो आनंद के आसपास
नहीं आना चाहिए ना, अप्रशस्त हो जाता है आहार लेते समय।
नहीं नहीं, जो दाताओं के जो दाता दे खुशी से आनंद हो, महीनों भर हुआ नहीं,
नहीं आना चाहिए उस समय। इतना खुशी भी मत हो जाओ कि आंसू आ जाए और आहार शुद्धि बिगड़ जाए, काय शुद्धि बिगड़ जाए, और उसको पहुंचने के लिए कोई रुमाल चाहिए पड़े या हाथ से हाथ अशुद्ध हो जाएंगे। इतना
भाव विभोर हो जाते हैं,
ये विवेक है, कहां किस समय खुश होना नहीं होना इसका भी समय है क्या नहीं। अभी हम आहार देने के लिए जा रहे हैं तो अभी अपने को काय शुद्धि रखना चाहिए, तो आंखों में आंसू तक नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
जानवर परामर्श, घुटनों से नीचे भाग का यदि हाथ से स्पर्श हो जाए,
हाथ बंधे हुए रहते हैं नीचे, घुटने के नीचे हाथ गया तो अंतरंग।
जानु परि व्यतिक्रम, घुटनों से ऊपर के अवयवों का स्पर्श हो जाए,
घुटने के ऊपर अवयव स्पर्श होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन कदाचित हाथ में शक्ति नहीं रही, हाथ छूट गया और नीचे ऐसा आ गए, जानु का यहां पर स्पर्श हो गया, तो फिर आहार नहीं लेना चाहिए, अंतराय करना चाहिए। ऐसा कम होता है लेकिन ऐसा हुआ तो अंतराय करना चाहिए।
नाभि दो निर्गमन, नाभि से नीचे मस्तक करके यदि निकलना पड़ जाए,
हाँ श्रावक के घर में प्रवेश करते समय किसी का चौकट बहुत छोटा हो और झुक करके जाना पड़ता हो, ऐसा मतलब कम से कम 3 फुट झुकना पड़ता हो नाभि के बराबर, तो ऐसे भी घर मकान होते होंगे गुफा टाइप के,
पहले के दरवाजे छोटे
हैं, हाँ गुफा टाइप के होते थे ना मकान पहले, पहले के लोग क्या है लोहा नहीं था तो इस लोहे को काट करके तो कोई चोर आ नहीं सकते, पर लकड़ी को काट करके तो आ सकते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, मोटी लकड़ी का खिड़की लगाते थे, उसको खोल सके बंद कर सके, और व्यक्ति न आ सके इतना छोटी खिड़की बनाते थे घुस न सके, दरवाजा भी छोटा होता था,
दरवाजा भी छोटा
होता था, झुक करके जाना पड़ता,
झुक करके जाने लायक दरवाजे भी होते थे,
मेहमान कहीं आज सीधे सीधे जाते इसलिए आकड़पन ज्यादा
अंधश्रद्धा। विनय से आना हो तो सीधा भी हो तो विनय से आना चाहिए, कि विनय से आने के लिए क्या छोटा बनाए क्या, जबरदस्ती हो गया फिर विनय की प्रति. विनय शिनाय आओगे सिर फोड़ के आओ, मतलब ये हो गया. फिर तो हिंसा के भाव आ गए उसमें. विनय से नहीं आते हो तो सिर फोड़ो. तो हिंसा का भी इंतजाम कर रखा है और विनय का भी इंतजाम कर रखा है, ऐसा हो जाएगा. वो नहीं होना तो चौकट इतना ही, पर आते समय अपने को अपने विवेक से विनय भी करना चाहिए, झुकते हुए विनय पूर्वक आना चाहिए मंदिर में.
पुराने मंदिर में छोटा मंदिर रहता है ना पत्थर का.
हाँ, पहले छोटे छोटे ही बनाती थी, पहले एक पद्धति ऐसी थी. पर उस पद्धति में ये होता है कि व्यक्ति मान लो उसको कुछ शरीर में समस्याएं हैं, झुक करके जा नहीं सकता, बहुत कठिनाई आती है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती में छोटा दरवाजा बना के रखा है. अगर बड़ा बनाते तो व्यक्ति आराम से विशुद्धि भाव से नम्रता से अपने विवेक से जाकर के दर्शन करके आता. अब इतना छोटा बना के रखा है कि बीमार व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे कमर में दर्द हो झुक नहीं सकता,
तो फिर
वो मंदिर ही नहीं जाएगा. क्योंकि चौकट उनको पहले से मालूम है कि हमारे गांव का मंदिर का चौकट छोटा है, इसलिए मंदिर नहीं जाता हूं. अगर बड़ा हो तो हर व्यक्ति आएगा, कमर में दर्द भी हो रहा हो भगवान का एक बार तो दर्शन करेगा वो. तो छोटा बनाने में कोई अर्थ नहीं है, फायदे नहीं है, नुकसान तो है फायदे नहीं है. व्यक्ति की नम्रता के लिए छोटा बनाना है.
प्रत्याख्यात सेवना, जिस वस्तु का त्याग है यदि उसका भक्षण हो जावे.
हाँ, यदि प्रतिज्ञा ऐसी हो त्याग करते समय कि हमने इस वस्तु को त्याग दिया, यदि ये आहार में भी आएगा तो अंतराय करूंगा. अगर ऐसा संकल्प लिया है तो अंतराय भी करना पड़ेगा. अगर ऐसा संकल्प है कि ये वस्तु त्याग है कभी खाऊंगा नहीं, पर गलती से किसी ने डाल दिया तो अंतराय नहीं करूंगा, ऐसा यदि संकल्प है तो अंतराय करने की जरूरत भी नहीं है. तो वही तो अपने ऊपर डिपेंड है ना कि हम किस टाइप से त्यागे हैं, अपने ऊपर डिपेंड.
अब जैसे बाल का अंतरा है, यदि अपन खा लेते समय किसी महाराज का मूंछ में बाल आया ये तरह, उसको अंतराय करना चाहिए नहीं चाहिए, अथवा आहार में आए तो मात्र अंतराय करना, तो बाल में आए तो उसको हाथ धोए तो चलेगा.
वो तो साइड में रहता है
जी,
पानी से गिरा भी सकते उसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं.
नहीं, अंतराय ऐसा अंतराय करे ऐसा कोई नहीं है.
नहीं, साइड में ही ना, अंतराय तब होता है जब आहार अशुद्ध हो गया हो, आहार में निकला हो तो अंतराय.
ऐसा तो हो जाता है केश लंच के समय पर.
नहीं, वो ठीक है, साइड में है तो उसको निकाल भी सकते हैं, धो सकते हैं उसको. आहार में निकला तो अंतराय आएगा. वो आहार के साथ पकता भी है ना, आहार सब अशुद्ध हो जाता है.
जंतुवत, यदि अपने से या अन्य के द्वारा सामने किसी जंतु का वध हो जाए,
पड़गाते समय देते समय चौके में नीचे देख करके चलना चाहिए. अगर एक भी जीव मरा तो अंतराय हो सकता है. और बरसात के दिनों में ये कीड़े बढ़ जाते हैं, चींटियां हैं, मक्खियां हैं, तो उस समय देख देख करके पैर रखते हुए सावधानी से आहार देंगे तो निर्विघ्न आहार होगा. अगर पर के हाथ दाता के पैर से या अपने निमित्त से अगर जंतु वध हो गया, जीव वध हो गया, तो अंतराय तो करना ही है, होता ही है.
जैसे आहार करते समय कोई जीव आया उसमें बैठ गया, बैठने पर फिर उठ के चला गया, उस आहार शुद्ध माना जाए तो अशुद्ध माना जाए, उसमें कैसे करें?
उसको लेना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए उसको. छोड़ सकते हैं, मरा नहीं है तो अंतराय भी नहीं है, पर गिरा और जीवित रहा तो अंतराय नहीं है.
उसको,
पर उस पदार्थ को जिसमें गिर गया उस पदार्थ को लेना नहीं चाहिए, उसको नीचे छोड़ सकते हैं साधु।
अभी और एक बात है, जैसे बर्तन में मक्खी गिर जाती है तो हाथों बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उस टाइम में क्या करना, हार करना नहीं करना?
वो तो फिर संभावना को देखते हुए करें, मरने की संभावना है तो अंतराय नहीं, संभावना है तो फिर अंतराय नहीं करेंगे, चल रहा है बचेगा ऐसी संभावना रहती है, तो संभावना के आधार से अंतराय करना नहीं करना उसी समय निर्णय किया जाता है।
ऐसा कहे तो अंतराय करना चाहिए, कोई भी अपना घर में कोई बहुत उसमें है, कौन बहुत सीरियस में है, हम लोग आहार भोजन करते हैं क्या, ऐसा पूछते हैं उस टाइम में क्या करना, इसलिए उनको भी महाराज को भी ऐसे छोड़ना चाहिए।
पिंडर, यदि कौवे आदि हाथ से ग्रास हरण कर ले।
हाँ, जंगल में आहार होते थे, अब कौवा पेड़ पर बैठा था, मुनि महाराज का आहार चल रहा था, दाता सब दे रहे थे, जंगल आकाश के नीचे क्या आहार देना निषेध है क्या? नहीं है, दे सकते हैं, पेड़ के नीचे आकाश के नीचे आहार देने में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते साधु।
मकान में छत लगाने की जरूरत है?
वही तो बता रहे ना, मकान हो, ये गृहस्थ की सावधानी है, गृहस्थ का विवेक है कि आहार देते समय आहार सामग्री में या साधु के अंजुली में कोई जीव न गिरे, जीव की रक्षा के लिए वह सावधानी रखता है, चाहे वह पेड़ हो, चाहे आकाश आकाश हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, वो उनके ऊपर डिपेंड, बांधना नहीं बांधना, और नहीं बांधा है और अंतराय आ गया तो अंतराय हम कर लेंगे, और ये हमारा काम नहीं कि आपको बांधना ही चाहिए तभी आहार लेंगे, ये कहना हमारा कर्तव्य नहीं है, वो तो श्रावक का विवेक है। हाँ।
पिंड पतन, यदि आहार करते हुए अपने पानी पात्र से पिंड ग्रास मात्र का पतन हो जाए।
कैसा?
यदि आहार करते हुए अपने पानी पात्र से पिंड ग्रास मात्र का पतन हो जाए, गिर जाए।
ले रहे थे गलती से, वो छूट गया, नीचे गिर गया, पूरा ग्रास चला गया तो अंतराय।
देने वाले के या लेने वाले?
हैं? देने वाले के हाथ से?
देने वाले के हाथ से।
देने वाले
के हाथ से। यदि हाथ करते हुए अपने पानी पात्र से,
पानी पात्र से कह रहे हैं ना, तो यति के हाथ से, वही हमने बताया,
वही बता रहे।
अगर लेते लेते गलती से गिर गया नीचे, उसमें कोई अशुद्धि हो, नीचे छोड़ना बात अलग है, परंतु वो गलती से प्रमाद वश नीचे गिर गया खाते समय तो अंतराय।
पतन शब्द के
कारण
पतन
तो उससे भी है, तरल पदार्थ वगैरह गिर गए और जीव वध हो गया तो अंतराय। तरल पदार्थ गिर गया, ग्रास सूखे पदार्थ गिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसका अंतराय नहीं है, खाली बर्तन गिर गया अंतराय नहीं है, लेकिन उतना भी गिरना ठीक नहीं है, चलता है कह करके रोज गिराएंगे तो खाली है चलता है तो लेकिन अभद्र लगता है ना, वो सावधानी नहीं लगती, प्रमाद जैसा लगता है, तो दाता में अगर प्रमाद हो तो जागृति नहीं है, जागृति नहीं तो मन शुद्धि कहां है? मन शुद्धि उसका नाम जो सब तरफ से सावधान है, प्रमाद ही नहीं है।
पानी जंतुवर, यदि आहार करते हुए पानी कूप में कोई जंतु स्वयं आकर मर जाए।
हाँ, पानी पात्र में स्वयं आकर के कभी कभी मक्खियां झगड़ती झगड़ती आती हैं और कहीं भी गिर जाती हो, अंजलि में भी गिर सकती है, और नीचे जो पात्र रखे रहते पानी गिरने का उसमें भी गिर करके मर सकती है, अगर वो मर गई तो अंतराय, अगर अंजलि पात्र में आके गिरे और नहीं मरी बच गई तो अंतराय नहीं है, उसको छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे। जीव वध हो गया तो ही अंतराय।
मांस आदि दर्शन, यदि मरे हुए पंचेंद्रिय जीव के शरीर का मांस आदि दिख जावे,
मरा हुआ प्राणी दिखा तो अंतराय। रास्ते में चलते चलते कोई प्राणी मरा है, उसका मांस रक्त हड्डी ये दिखा, अप्रशस्त लगा तो अंतराय कर।
अगर बाहर का जो भी आदमी हो देखते होते जा रहा है, सडनली प्रिकॉशन लिया है राउंड में, तभी सडनली कहां से तो आपके बीच में यति के सामने से जा,
यति के दृष्टि में आ गया तो ही अंतराय। अगर यति की दृष्टि को बचा के आप ले जा रहे हैं तो अंतराय नहीं है।
बहुत सारे सिटियों में या छोटे छोटे गांव में भी पार्लर बहुत खुलने लगे महाराज जी मांसाहारी।
हाँ, इसलिए उस रास्ते से
नहीं, उसके बारे में
उस रास्ते से नहीं ले जाते। हाँ,
ले जाना नहीं चाहिए। उपसर्ग, यदि देवकृत आदि उपसर्ग हो जाए,
देवकृत कोई अंतर्देव आदि उपसर्ग मतलब शरीर प्रवेश कर सकता है, कुछ बाधा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आहार के टाइम में हो गया तो अंतराय। क्या पूछा? देखो,
यदि देवकृत आदि उपसर्ग हो जावे तो अंतराय, उसके बारे में।
देवकृत उपसर्ग हो जाए तो अंतराय होता है।
कैसे पूछा?
देवकृत उपसर्ग कैसे? आहार लेते समय भी देव हमको सता सकता है, तो कोई उपसर्ग कर सकता है ना, किसी भी तरह से उपसर्ग हो सकता है, उनकी अनेक प्रकार से कर सकता है। तो उस टाइम में आहार के टाइम में ऐसा कुछ हुआ तो अंतराय करेंगे। मनुष्य भी उपसर्ग कर रहा है तो अंतराय है ना, किसी ने अशुभ वचन कहा तो अंतराय करेंगे।
आदांतरे जीव, यदि पंचेंद्रिय जीव पैरों के अंतराल से निकल जाए,
चूहा आहार करते समय कोई चूहा बिल्ली दोनों पैरों के बीच में से चला गया, पास हो गया तो स्पर्श तो हुआ, तो तिर्यंश प्राणी का शरीर स्पर्श अगर हो गया तो अंतराय हो जाएगा। गाय है, निकलते समय भी गाय अगर टकरा गई हमसे या पास से, गाय है, सुअर है, कोई भी पंचेंद्रीय प्राणी अगर स्पर्शित हो गया तो भी अंतराय।
भाजन संपात, यदि आहार देने वाले के हाथ से बर्तन गिर जावे,
आहार
देने वाले के हाथ से बर्तन गिर जावे,
वो तो है ही, अगर उसमें तरल कोई पदार्थ है गिरा तो हिंसा होती है, इस दृष्टि से अंतराय कहा। जिसके गिरने से हिंसा नहीं हुई या हिंसा नहीं हो सकती उससे कुछ नहीं, तरल पदार्थ गिरेगा तो वो बहता 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 कहीं भी जाकर के वो जीव जंतुओं के ऊपर से भी जाएगा, तो अंतराय है उसमें जीव जंतु वध होने से।
उच्चार, यदि अपने उदर से मल च्युत हो जाए,
हाँ मलमूत्र मतलब निकला तो भी अंतराय होता है।
यदि अपने मूत्रादि
होता है, जुलाब हो गया हो, जुकाम हो गया हो, होता है।
अभोज्य गृह प्रवेश, यदि आहार हेतु पर्यटन करते हुए मुनि का चांडाल आदि अभोज्य घर में प्रवेश हो जावे,
चांडाल आदि का प्रवेश मतलब वो चांडाल को सदा सूतक रहता है, चांडाल को सदा सूतक रहता है, तो चांडाल आदि का प्रवेश हुआ जिस घर में दाता आहार दान दे रहा है, उस घर में ऐसा कुछ हुआ तो अंतराय हो जाएगा।
पतन, यदि मूर्छा आदि से अपना पतन हो जावे, अर्थात आप गिर पड़े
यानी चक्कर आया या गिर पड़े, पत्थर आदि लगा गिर पड़े जाते समय, रास्ते में भी, रास्ते में पत्थर लगा गिर पड़े
आता है तो पात्र इसका
काम, आहार लेते समय चक्कर आया तो अंतराय हो जाएगा।
इसलिए हमारे आहार देने वाले सुबह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
देने वाले और लेने वाले को भी यहाँ चक्कर आ गया तो अंतराय आएगा।
नहीं,
ये कई बार होता है, देने वाला दाता भोजन नहीं करता, गर्मी के दिनों में ऐसा ही खड़े होकर के एक आध घंटा पौन घंटा खड़ा रहना पड़ता है, और वो कुछ भी खाए बिना आहार दे रहा हो तो उसको चक्कर आना स्वाभाविक है। ये बहुत बार होता है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भूख सहन नहीं होती और चक्कर तो आता ही है, कमजोरी हो पहले से, रक्त कम हो शरीर में, तो ऐसे लोग आहार देने के लिए खड़े हो जाएं तो चक्कर तो आता है, थाली पकड़े हैं ऐसा ऐसा होने लगा होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है ये, और नीचे बैठ गए, थाली उन्होंने फट से किसी ने हाथ से उससे ले लिया और वो नीचे बैठ गए, गिर नहीं पड़े लेकिन चक्कर तो आ गया। ज्यादा खाने से
ज्यादा खाने से
ज्यादा खाने से नींद आ सकती है, चक्कर नहीं आएगा।
भोजन करना चाहिए सब कुछ,
हाँ, ये समस्या है कि आहार करना चाहिए क्या नहीं। आहार श्रावक कर सकता है, कहीं कुछ दोष नहीं है। मूलाचार में तो ये उल्लेख है कि मुनि को आहार किस वक्त निकलना चाहिए, उन्होंने कहा जो खा करके चौके में खाकर बच्चे आदि स्कूल जा रहे हों तो ये अनुमान करके कि इनके आहार में, इनके घर में आहार तैयार है, तैयार है, ये अनुमान लगाकर आहार के लिए उठे, तो बच्चे तो खा के जा रहे हैं ना। ऐसा कोई घर का व्यक्ति खा के गया हो, हाँ ये बताया है कि मुनि महाराज का आहार करते समय असयमी का आहार मत कराओ एक साथ, ये अंतराय है, दोष है, परंतु पहले आहार करके वो गया है तो इस उसमें से निकाल निकाल करके उसमें थोड़ी खाया है, उनको जितना चाहिए उसको दिया गया है तो वो कोई दोष नहीं है। ऐसे बच्चों को तो करना ही पड़ता है। और दूसरी बात, खुद जो आहार जिसको देना है उनको भी पहले से कुछ खाया है तो कोई दोष नहीं है, खा करके दे सकते हैं। पर इतना ही है कि जो वहां आहार सामग्री इत्यादि है प्रशस्त रखना चाहिए, वो जगह है, आहार है, चम्मच से निकाल निकाल करके खाना, बिगाड़ना नहीं किसी वस्तु को, इधर का उधर डच गिच करना नहीं गिराना नहीं, आराम से जितना चाहिए उतना अलग से प्लेट में लेकर के दूर बैठ करके खा लिया तो कोई दोष नहीं है, और उसके बाद आहार देना हो तो दे भी सकते हैं
महाराज। वो
पर मुनि महाराज के साथ नहीं खा सकते, मुनि महाराज के साथ तो छुल्ला पैलक भी नहीं खाते, उनका आहार देखकर फिर बाद में आहार करते,
वो नहीं खाएंगे, मुख शुद्धि भी नहीं बसता,
हाँ ना,
मुख से भांस भी आने शुरू लगेगा।
किसका?
तो नहीं, जो दाता देने वाले वो खाएंगे नहीं है तो महाराज होने के बाद ही नहीं खाएंगे, ऐसा खाएंगे ना, कहीं किसी किसी का मुख शुद्धि भी नहीं रहता, भांस आने लगती है तो फिर खाए शुद्धि तो नहीं रहेगी।
नहीं, भांस इसलिए नहीं आती, अगर वो कुल्ला करे तो भांस नहीं आएगा,
वो तो खुला भी करना चाहिए, वो तो खुला करेंगे तो भोजन कर सकते हैं।
वो बांस किसकी आती है? जो आलू प्याज खाते हैं, जो आलू प्याज खाते हैं उनके मुंह से बांस निकलती है सुबह सुबह,
आलू चतुर्दशी रही, अष्टमी जो रही है और घर में चौका है तो श्रावक को एक ही टाइम खाना पड़ता है, तो आहार होने के बाद ही खा लिया तो भी चल सकता है,
वो तो चलता है, वो तो चलता
है। बांस आने का सवाल तो वो गलत रहता है।
देखो, बांस आने का सवाल तब उठता है जब जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खाया हो, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति वो पेट में है शराब, फिर भी गंध आती है कि नहीं? तो ऐसी कुछ जो शाकाहार की चीजें हैं, वनस्पतियां हैं, उनको खाने पर भी गंध आ सकती है। और वो रात भर, क्योंकि वो पेट में अपना असर छोड़ देता है, तो श्वासोश्वास से वो श्वासोश्वास से बाहर भी आता है। तो ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। क्यों कहा है? आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, ऐसा कहा है जिनेंद्र भगवान ने? क्योंकि श्रावक है, अपने गुरु को, सच्चे सुपात्र को आहार देने वाले हैं। तो अगर बांस आने लग जाए तो ठीक नहीं है। श्वासोश्वास को सुगंधित रखने के लिए आलू प्याज नहीं खाना। नहीं देता उनको मालूम ना हो तो देगा।
उपवेशन यदि बैठना पड़ जाए।
अभी क्या पूछा था, एक बात रह गई, क्या कह रहे थे आप? हाँ, जिसको, हाँ, हम ये कहना चाहते थे, जिसका उपवास है जिस दिन, वो आहार नहीं दे सकता। मुनि को तो आहार पकावे, मुनि को तो दे और खुद उपवास करे, तो उद्दिष्ट आहार नहीं होगा क्या? सुन रहे सभी? उपवास के दिन आहार दे सकते मुनि को? मुनि को पकाएंगे, मुनि को देंगे और खुद उपवास करेंगे, उद्दिष्ट नहीं हुआ क्या?
भाद्रपद में तो 10 उपवास रहता है, वो तो व्रति दे सकता है।
नहीं देना चाहिए,
नहीं बता रहे।
वो तो पुण्य का फल बोल के वो घर में दे
देगा। उपवासी को आहार देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आहार देने का दाता वो बन नहीं सकता, कि खुद उपवास रहेगा और पकाएगा क्या अतिथि के लिए?
मैं करता घर में अभी सर्जन करते हैं, और मैंने 10 उपवास किया, अगर 5 उपवास किया भाद्रपद के सीजन में, अगर घर में चौका हो गया तो बोले तो आहार को
उपवास से आहार दे सकता है क्या? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप अगर भोजन करते हो तो अतिथि स्वयंभाग आपको करना है, और आपका भोजन तो उसमें बना ही नहीं है, तो फिर देने से क्या मतलब है? आपका आहार बना हो और खाना भी हो तो उससे, उसमें से आप समीभाग करोगे ना। तो आपके घर वाले भी आपका उपवास है तो आपका आहार आपके हिस्से का बनाते नहीं है वो। क्या बनाते हैं?
कमी ज्यादा दे सकते हैं ना, उपवास
करता। देखो एकासन, एकासन करने वाला व्यक्ति सुबह ही संकल्प लेता है, एक मिनट सुबह ही संकल्प लेता है एकासन करने वाला, तो एकासन करने का मतलब सुबह भोजन करेगा, शाम का नहीं करेगा, तो वो आहार दे सकता है। अपने लिए, खुद के लिए भोजन पकाता है तो आहार देने में कोई दिक्कत नहीं, और उपवास ही करना हो तो अतिथि के लिए पकाएगा, वो नहीं दे सकता, उद्दिष्ट है वो। सुनना,
8-10
लोग हैं, देखो घर के लोगों को पकाना कोई दोष नहीं है, उद्देश्य त्याग उनका है कि हमारा है। औद्देशिक भोजन, औद्देशिक भोजन किसको नहीं चलता? आपके लिए फिर तो शादी आदि में तो आपके लिए पकाया जाता है ना, सब सामुदायिक के लिए, तो सामुदायिक उद्देश्य बना करके पकाया जाता है। आप लोग तो लेते ही हैं उसको, क्या उद्दिष्ट त्याग है? शादी में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे निमित्त से पका है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, साधुओं के उद्देश्य से श्रावक न पकाए, ये हम लोगों का उद्दिष्ट त्याग रहता है, इसलिए हमको पका नहीं सकते आप, ये है। साधु को पका नहीं सकते, साधु के उद्देश्य से।
उपवेशन यदि बैठना पड़ जावे,
तो 10 लोगों का क्या था वो मालूम पड़ गया?
पड़ गया। और क्वेश्चन का है,
हाँ
क्वेश्चन का है,
उनका कहना क्या है? एक को उपवास है, बाकी लोग तो खाना खा रहे हैं, तो उद्दिष्ट नहीं होएगा, बाकी लोग तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो उद्दिष्ट।
हम क्या कह रहे हैं, जो उपवास कर रहा है, कर चुका है, वो आहार हमको नहीं दे सकता, बाकी सब लोग दे सकते हैं।
वो तो दे सकता है, जिनका उपवास है वो नहीं दे सकता।
जो खा रहा, जो भोजन करने वाला है वो आहार दे सकता है, और पहले किया हो तो भी दे सकता है, और बाद में करना हो तो भी दे सकता है, पर जो खाना खाता है वही अतिथि संग्रह करेगा, क्योंकि उपवासी का आहार पकता नहीं है वहां। क्यों पकेगा फालतू, आप आज उपवास कर रहे हैं और आपके हिसाब से भी आहार बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। उनको मालूम है कि आप चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं, तो आपका पकाएगा नहीं वो, और इसलिए आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपका भोजन होना चाहिए वहां, नहीं है तो किसमें से समीभाग करोगे, इसलिए।
लेकिन मैं करता घर का वो सामान आना, तो वही लाता है ना।
कौन?
घर चलाने वाला।
हाँ, उपवास करने वाला।
हाँ वही,
वो तो सेवा हो गई, वो तो सामान आपको लाके देता है, ये उद्दिष्ट नहीं। वो उपवासी है, आज उपवास करने वाला है, चतुर्दशी है, आपको सभी सामग्री ला करके दे दिया, ये तो घर की संसार की व्यवस्था है, ये इससे कोई संबंध नहीं आता। अतिथि के हाथ में आहार डाल नहीं सकता वो। हाँ, क्योंकि खुद का पका नहीं है, इसलिए खुद के हिस्से का पकना जरूरी है तो दे सकते हैं, और ऐसा तो कोई करेगा नहीं, उपवास भी हो और खुद के हिस्से का भी पका के रखा हो, फालतू क्यों पकाएगा। इसलिए उपवास के दिन आहार देना नहीं चाहिए। एकासन के दिन दे सकते आप, पर उपवास के दिन नहीं दे सकते। एकासन के दिन तो आपका पका हुआ रहता ही, उसमें से देंगे आप। नहीं, गलत नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए कि उपवास दिन हम दे दे, भावना नहीं करना चाहिए। आहार ठीक हो या अनुमोद ना करो, अनुमोदना कौन करता है जो दे नहीं सकता, और देता कौन है जो पकाता है खुद के लिए, वो नियम से देता है, और अनुमोदना कौन करता है जो उपवासी है, जो देव लोग हैं, जो तिरेंज प्राणी हैं। तिरेंज प्राणी स्पर्श हो जाए तो भी अंतराय बताए ना, तो फिर आहार कैसे दे सकते हैं, वो अनुमोदना करते हैं, महाराज का आहार ठीक है। देव भी अनुमोदना करते हैं, देव नहीं दे सकते, क्योंकि देव भी ये कौलाहार नहीं करते हैं ना, इसलिए ये कौलाहार
चंद्रगुप्त मौर्य
है, वो तो गलती हो गई थी, देवों ने हाँ गलत काम किया था, और फिर उद्दिष्ट ही खिलाया था 4 महीने तक, इसलिए मुनियों को वो करना पड़ा प्रायश्चित। देवों के हाथ से एक दिन भी आहार ले तो प्रायश्चित है शास्त्रों में, मनुष्य रोज भी ले तो प्रायश्चित नहीं, उपवास से लेते हैं तो प्रायश्चित है।
देव जो दे रहे हैं उनको से मालूम नहीं पड़ा क्या,
उपवास से भी लेते हैं तो प्रायश्चित, वो देव के समान है जिस दिन उपवास कर रहा है, खुद का भोजन तो है ही नहीं, और हो सकता है अपने लिए पकाया हो फिर, और अतिथि समीभाग करने आया हो, अतिथि के उद्देश्य से पका करके रखा हो, खुद तो खाएगा नहीं, तो देवों के समान ही हो गया ये उपवासी का कार्य, तो उपवासी दे नहीं सकता। अगर देता है तो जैसे देवों से लेने पर दोष प्रायश्चित है, वैसे उपवासी के हाथ से लेने पर प्रायश्चित है मुनि को, लगता है ना, देने से भी दोष लगता है। वही तो कह रहे हैं ना, देना नहीं चाहिए। ये तो लिख रहे हैं, लगा है अज्ञान अवस्था में, अब लगा है ज्ञान अवस्था में जानबूझकर करते हैं तो दोष नहीं लगेगा, लगेगा वो भी। अज्ञान अवस्था में सभी दोष होते हैं, लेकिन ज्ञान अवस्था में उसका त्याग होने पर वो पूर्व का दोष निवारण होता जाता है, वही प्रायश्चित है। गलती को सुधार लेना ही प्रायश्चित है।
उपवेशन यदि बैठना पड़ जावे, यदि बैठना
हाँ साधु को हाँ आहार लेते लेते अगर बैठ गए तो फिर पुनः कड़े होकर आहार नहीं ले सकते, अंतराय ही हो जाएगा।
कोई
अगर बैठ गए तो उठेंगे नहीं। उपवेशन
अगर यदि बीमार रहेंगे और उनकी कैपेसिटी नहीं रहे,
कोई भी बीमारी हो कुछ भी हो,
अगर बूढ़े वृद्ध रहने तो श्रावक ने उसको पकड़ा के आहार दे दिया,
दे सकते हैं ऐसा कुछ हेल्प कर सकते हैं, परंतु अगर वो बैठ गए तो आहार नहीं ले सकते।
चर्या को निकलने के बाद श्रावक ने उनको पकड़ के, एक जन ने पकड़ के उनका स्टैमिना बढ़ा।
हाँ ठीक है, ठीक सेवा है, वो सेवा है। समाधि के टाइम में ऐसा किया जाता, समाधि के टाइम में कर सकते ऐसा।
यदि कुत्ता आदि काट खाए,
हाँ कुत्ते ने काट खाए, स्पर्श से भी जब अंतराय आता है तो फिर काटा तो फिर तो अंतराय है ही,
खून भी निकल रहा है।
हाँ खून भी निकल जाएगा।
भूमि स्पर्श सिद्ध भक्ति कर लेने के बाद यदि हाथ से भूमि का स्पर्श हो जावे,
हाँ ऐसा बैठे हैं सिद्ध भक्ति कर लिया, कायस्थ कर लिया, सिद्ध भक्ति कर लिया, इसके बाद जमीन को हाथ नहीं लगाना, अगर जमीन को हाथ लग गया तो अंतराय। सिद्ध भक्ति करने के बाद या तो खड़े होकर सिद्ध भक्ति करे तो भी चलेगा, पहले जमीन को हाथ लगा करके, यदि वृद्ध हैं या बीमार हैं, चक्कर आने की संभावना है या घुटने आदि में त्रास है तो हेल्प तो लेना पड़ेगा उठते समय। सिद्ध भक्ति पढ़ने के बाद नहीं करना ये कार्य, उठने के बाद सिद्ध भक्ति करो तो चलेगा। सिद्ध भक्ति करने के बाद, कायस्थ करने के बाद जमीन को हाथ नहीं लगाना, और फिर खड़े होने के बाद अगर एक पाटे को छू लिया है वो हो गया है तो धो सकते हैं, खड़े होकर के भी धो सकते हैं, एक दो अंजलि जल डाल दिया धो, फिर सिद्ध भक्ति कर लिया, फिर आहार ले लिया, फिर कोई दोष नहीं है।
निष्टीवन यदि अपने मुख से थूक कफ आदि निकल जाए,
आहार लेते समय कफ आ गया, जुकाम होने से या कफ बढ़ने से ऐसा भी हो सकता है, आहार के टाइम में आ गया वो तो अंतराय हो जाएगा।
उदर कृमि निर्गमन यदि उदर से कृमि निकल पड़े,
पेट में कीटाणु हो जाते हैं और फिर वो निकल भी सकते हैं, तो कीड़ा गिर गया मान लो निकल करके पेट से तो अंतराय हो जाएगा, अंतराय हो जाएगा।
अदत्त ग्रहण यदि बिना दी हुई कुछ वस्तु ग्रहण कर ले,
बिना दी हुई यानी ऐसा हो सकता है ये कि साधु आहार ले रहे हैं, श्रावक दे रहा है, वो जो जो देना चाहता है वो लेते जा रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं, परंतु जो देना ही नहीं चाहता था और किसी ने उसको उठा के दे दिया, दाता मना कर रहा था, मुख्य दाता उसको नहीं देना, मना करके रखा था और उनको वो पता नहीं था, ऐसा दाता के स्वामित्व वाले आहार को किसी ने उठा करके दे दिया तो अंतराय हो जाएगा।
चौकी वाले के घर के दाता को किसी ने ऑर्डर दे दिया थर्ड पार्टी, वो गलती से मना करने के बावजूद भी दे दिया तो
नहीं, मतलब दाता ने, जैसे कि बाहर के लोग भी आ गए और उस घर के भी हैं, दाता ने कहा ये चीज नहीं देना है तो आपको देना नहीं, दाता को पूछ के देना कि दे क्या नहीं दे, फिर कोई दिक्कत नहीं, पर दाता जिसको देना नहीं चाहता उसको नहीं देना, आदत्त कहलाता है वो, आदत्त ग्रहण हो जाएगा। दाता देना नहीं चाहता और आप देना चाहते हैं और उसको ग्रहण कर लिया तो तो आदत्त ग्रहण हो जाएगा, आदत्ता दानम स्तेयम। सूक्ष्म चोरी हो जाएगी ना वो। आदत्ता दानम स्तेयम, जिसको आप देना नहीं चाहते हो हम उसको जबरदस्ती लेना चाहते हैं, तो ये चोरी है।
वो चौके में पूछ के गया तो
दाता की अनुमति से दे सकते हैं, तो वो चोरी नहीं। उनको ज्ञान नहीं है ना बाहर से जो आते हैं क्या देना क्या नहीं देना, तो वैसे तो ये होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बाहर से आए हुए लोग वहां के आहार को उठा करके दे ये ठीक नहीं, खुद का आहार लाए, खुद के घर से खुद कोई लिए पका करके उसमें से दसवा हिस्सा सब चीजें दसवा दसवा हिस्सा ले आओ, तो एकदम निर्दोष है वो, एकदम निर्दोष, फिल्टर प्योर प्योर पेट्रोल है वो, खुद के लिए पका हुआ रहता है और थोड़ा थोड़ा सब ले गए। दसवा हिस्सा देना, दसवा हिस्सा ही देने लायक रहता है, और उतना देगा तो वो खुद भी भूखा नहीं रहेगा और अतिथि का पेट भी भरेगा। ऐसे सात घरों का आया हुआ अतिथि का आहार हो गया तो किसी के घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी और एक साधु का आहार आराम से हो जाएगा। जैसे दाता 10% ही देने का अधिकारी हर चीज को, और अपन ने ज्यादा ले लिया तो एक तो भ्रामरी वृत्ति चली गई और दाता के आहार को भी अपन ने खा लिया, तो आदत्त ग्रहण नहीं, ये भी हो जाएगा आदत्त ग्रहण हो जाएगा।
उनके खुशी से तो
नहीं, वो तो देना चाहेगा ऐसी बात नहीं, आदत्ता दान नहीं होगा वो, फिर भी दाता के आहार को हम करें ये उचित नहीं है। जैसे आप भी सोचते हैं कोई चीज एक डजन केला लाए हैं तो आप चाहते हैं कि सब थोड़ा थोड़ा दें, ये भाव होता है कि हम ज्यादा खाएं और दूसरे को कम खिलाएं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं।
वर्तमान में भी नहीं होता है, घर की फैमिली छोटी है और वो अतिथि का भी 10% दे दिया तो दोनों भी भूखे
हैं। ऐसा 10% मतलब कोई चीज लाते हैं घर में भी आप बांट के ही खाते हैं ना, वैसे साधु को कितना दान समीभाग का अतिथि समीभाग का हिस्सा उतना कितना है तो 10%, जिससे कि दाता भी भूखा न रहे और अतिथि भी भूखे न रहे।
यदि अपने ऊपर या अन्य किसी पर तलवार आदि से प्रहार हो जाए,
तलवार का प्रहार आहार के टाइम में, ठीक है ना, उपसर्ग है, मनुष्य कृत उपसर्ग है, देव कृत उपसर्ग से जैसा अंतराय होता है मनुष्य कृत उपसर्ग से ही अंतराय होगा। फिर
अपने ऊपर या अन्य किसी के ऊपर तलवार से प्रहार,
हाँ दे रहा है उनके ऊपर हो गया, तो जैसे कोई युद्ध वगैरह हो रहा है तो उस समय आहार के टाइम में ही शत्रु लोगों ने आक्रमण किया और फिर वो अंधे रहते हैं, वो ये थोड़ी देखेंगे कि इस घर में क्या हो रहा है, साधु का आहार हो रहा था अंदर और आकर के कब्जा ले लिया, तो उसमें अंतराय।
ग्राम दाह, यदि ग्राम में अग्नि लग जाए,
कहीं आस पास के घर में आग लगी पता चला तो अंतराय करेंगे।
पादे न किंचित ग्रहण, यदि पैर से कुछ ग्रहण कर लिया जाए,
साधु पैर से तो ग्रहण नहीं करते, कभी होता नहीं है, लेकिन कदाचित तो हो न जाए, उसको भी सावधान से दिया कि पैर से उठा करके कोई चीज लेना नहीं। ये तो असंभव सा लगता है लेकिन लिखा है, नहीं, भगवान ने यहाँ तक स्ट्रिक्ट कानून लगाया है कि तुम पैर से भी कुछ नहीं ले सकते, केवल हाथ से ही लेना जो लेना है। और हाथ से दाता के हाथ से छुड़ा नहीं सकते, वो भी अंतराय है।
वो देना बोल गए तो याद भी नहीं दिलाएंगे
उसको, भी बताएं
यदि भूल जाए तो याद भी नहीं दिलाएंगे। याद भी नहीं दिलाएंगे
क्या
दाता, भूल जाएंगे कोई चीज का, याद भी दिला नहीं
सकते। मौन है ना, याद कैसे कराएंगे?
तो हूँ कहेंगे तो
हूँ कहेंगे तो भी दोष है ना। वो चाहिए चाहिए हूँ कहेंगे तो भी दोषी हाँ हूँ कह, श्रावक को जमेगा, ये मुनि को थोड़ी जमेगा। वो के छोटे बच्चे हैं कि वो चाहिए ये चाहिए। मुनि महाराज तो मुनि महाराज,
नमक दम पड़ा तो उसको याद करके
ऐसा ही खाएंगे, याद नहीं दिलाएंगे।
अगर ये दिया याद श्राव
दोष है, दोष है। याचना नहीं करना किसी अयाचक वृत्ति से। श्रावक और विवेक से समझता है और खुद करता है सब काम, तो त्यागी को दोष नहीं लगेगा। पर श्रावक भूल गया है और त्यागी याद दिला रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं, याचना वृत्ति आती है।
करेण किंचित ग्रहण, अथवा यदि हाथ से कुछ वस्तु भूमि पर ग्रहण कर ली जावे,
तो भूमि पर ग्रहण करने के लिए तो झुकना पड़ेगा, और नाभि से आधा अगर नीचे अगर हाथ गया तो भी अंतराय है, फिर जमीन स्पर्श तो बहुत ही नीचे हो गया। मतलब हाथ से और पैर से भी कुछ उठाना नहीं, इतना स्ट्रिक्ट रखा है। नहीं, वहां जाकर बच्चों का खेल नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं खाते समय, नीचे भी गिरा जमीन पर भी गिरा तो उठा के खा लेते हैं। और पैर से भी उठा लेंगे वो, हाथ से भी उठा लेंगे। हाथ से नहीं उठा पा रहे हैं तो पैर से उठा के खा लेंगे, निर्विकल्प रूप से खा लेंगे वो। पर साधु ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि कहेंगे आप, कहीं नहीं होता, लेकिन ये हो ना जाए इसलिए लिखा है। बच्चों का खेल चौके में ना हो जाए इसलिए लिखा है। बच्चे अज्ञान रहते हैं, साधु भी अज्ञानी रह सकते हैं। कि कोई भी इसको पढ़ा नहीं है और एकदम से दीक्षा ली आज ही,
दीक्षा देते हो तो इसका ग्रंथ पढ़ के नहीं देते?
नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं की दीक्षा हो गई, उनको कुछ मालूम नहीं था, और मालूम नहीं था इसलिए यही तो हुआ, सब प्यास लगी भूख लगी तो उठ के चले गए, कोई पेड़ पर चढ़ करके आम खाने लगे दिगंबर अवस्था में।
नहीं, और आदिनाथ भगवान के पहले तो कोई नहीं
थे, नहीं
थे में कोई नहीं थे, तो फिर वो दीक्षा किनके पास
है? नहीं, स्वयं आदिनाथ को ही साक्षी बनाकर आदिनाथ
चल सकता है।
हाँ चल सकता है, चल सकता है।
गुरु के सामने ही दीक्षा लेना पड़ता है, कोई
दीक्षा अकेले भी ले सकते हैं। दीक्षा पर दीक्षा लेने के बाद जो दीक्षा के योग्य ज्ञान है उसको ज्ञान लेना जरूरी है, किसी गुरु को बनाना जरूरी है, लेना जरूरी है। ज्ञान ले लो और निर्दोष चर्या पालन करो।
उस टाइम पर योग हो गया, पहले कोई नहीं थे तो इन लोगों ने कैसे ले?
आदिनाथ ही दिगंबर जैन मुनि है, पहले मुनि इस युग के चतुर्थ काल के, उससे पहले मुनि हुए नहीं थे, भोग भूमि थी ना, भोग भूमि में तो मुनि दीक्षा नहीं लेते हैं कोई। और 14 कुलकर जो हो गए उन्होंने भी दीक्षा नहीं लिया, लेते भी नहीं वो, तो तीर्थंकर ही जो रहते हैं वो सर्वप्रथम लेते हैं और उनके माध्यम से ही ये दिगंबर जैन धर्म का प्रसारण होता है, प्रसिद्धि में आती है, त्याग तपस्या फिर मोक्ष इत्यादि का विधान होता है। पर वो भी तीर्थंकर जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, अरहंत नहीं बनते, तब तक उपदेश भी नहीं देते।
तो फिर उनके साथ वो जो भी राजा
4000
तो वो राजाओं को उन्होंने बोले नहीं,
नहीं बोल नहीं सकते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न हुए बिना तीर्थंकर बोलते ही नहीं, चाहे सभी लोग नष्ट भी हो रहे हैं और भ्रष्ट भी हो रहे हैं, बोलते नहीं, वो मौन ही रहते अखंड। दीक्षा के टाइम में ही अखंड संकल्प रहता है, जब तक मैं केवल ज्ञान नहीं होगा, किसी को कुछ समझाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, संकेत नहीं करूंगा, केवल अपने आत्म ध्यान में रहूंगा, अपने आप में रहूंगा, ये संकल्प रहता है उनका अखंड केवल ज्ञान होने तक। और आदिनाथ भगवान को 1000 साल मौन रहना पड़ा, 1000 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ, मौन 1000 साल निभाए, 1000 साल। महावीर भगवान 12 साल मौन निभाया और इसके बीच में उनको देखा देखिए जो दीक्षा लेते हैं उनको भी कुछ समझाने नहीं जाते हो,
दोष उनका ही जो लेने वाला,
लेने वालों को दोष नहीं, लेने वालों ने तो सच्चे भावना से ही लिया है, पर मुनिचर्या कैसे होती है इसका ज्ञान न होने से च्युत होते हैं। लेते समय तो त्याग भाव रहते ही है, पर चर्या कैसे निर्वाह करना चाहिए इसका डिटेल ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो च्युत होते हैं। फिर केवल ज्ञान जब तक तीर्थंकर को नहीं होगा मुनिचर्या का उपदेश नहीं मिलेगा, और वो मिलने पर फिर जो च्युत होते हैं वो पुनः दीक्षा भी ले लेते हैं, और कई लोगों ने ले भी लिया और कई लोगों ने नहीं भी लिया, 4000 में से बहुत छट गए गए हो गए तो गए ही, और कई लोगों ने लिया भी।
इस प्रकार भोजन में अंतराय होता है ऐसा समझना चाहिए,
ठीक है,
और इसका पिंड शुद्धि अधिकार का उपसंहार करते हैं।
आयत हो गया, पिंड शुद्धि अधिकार खत्म हो गया।
इस जगत में जिन्होंने पिंड शुद्धि का उपदेश दिया है और जिन्होंने सम्यक प्रकार से इसे धारण किया है वे वीर साधु वर्ग मुझे 3 रत्न की शुद्धि प्रदान करें।
लिखने वाले भी कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा वीर चर्या यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रौढ़ता आ जाए, ऐसा मेरा जीवन बने, ऐसा भावना बारे।
यदि क्या वो अंजलि छूट गई तो चल सकती
है? नहीं, अंतराय हो जाएगा। हाँ, अंतराय, हाँ, ऐसा अलग अलग नहीं होना, इतना हो गया तो अंतराय